सर्जरी के बाद साक्षी को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आरव और मंथन दोनों साथ में उससे मिलने गए थे। साक्षी को अब तक होश नहीं आया था, तो वो दोनों उसे देखने के बाद वापस आ गए। माहिरा कबीर के साथ जा चुकी थी, जबकि आरव मंथन के साथ रुका था। वही अयान आयु के साथ अपने केबिन में था। आयु का मूड उखड़ा हुआ था। पता नहीं इन दोनों की प्रॉब्लम क्या है जो मुझसे इतना चिढ़ते हैं, आयु ने गुस्से में कहा। वो अयान के सामने चेयर पर बैठी थी। अयान ने उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर कहा, तुमने आरव की गाड़ी खराब की थी तो वो वजह हो सकती है। पेशेंट के भाई को मैं नहीं जानता, उसके रूड होने के रीजन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं लगता आरव गाड़ी खराब करने को लेकर अब तक नाराज होगा, उस बारे में हमारी बात हो गई थी, आयु ने बताया। अच्छा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? अयान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। क्योंकि हम दोनों की कोई भी मुलाकात इतनी अच्छी नहीं रही कि इसके बारे में तुम्हें बता सकूं, आयु ने चिढ़कर जवाब दिया। और पेशेंट का भाई, उसके बारे में क्या कहना है? ये वही है ना जिसके बारे में तुम फिक्र कर रही थी? अयान ने आरव के बाद मंथन के बारे में पूछा। सबसे पहले उन्हें पेशेंट कहना बंद करो। जानती हूँ हम पेशेंट का नाम याद नहीं रख पाते, पर उनका रख सकते हैं। मैं उन्हें जानती हूँ, वो साक्षी दीदी हैं और उसके साथ उनका भाई मंथन है जो अनु का बॉयफ्रेंड था। वो मुझसे जब भी मिलता है रूडली ही बात करता है। पता नहीं अनु ने ऐसा क्या बता दिया होगा उसे मेरे बारे में, और आज तो उसने हद ही कर दी, आयु ने मुंह बनाकर कहा। कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक करो, हमें इन सब की आदत हो गई है। बहुत से पेशेंट के रिलेटिव्स रूड होते हैं जो हमें कुछ भी कहकर निकल लेते हैं। इतने सालों में काम करते हुए मुझे तो इन सब की अच्छे से आदत लग गई है, अयान ने उसे समझाया। आयु ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया, उसने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10 बज रहे थे। तुम्हारी ड्यूटी कब की खत्म हो चुकी है? अब साक्षी दीदी ठीक है, तुम चाहो तो घर जा सकते हो, मैं पीछे से देख लूंगी, आयु ने कहा। रुकना तो मैं भी जा रहा था, पर मॉम यहाँ आई हुई हैं, मैं रायशा को उनके पास अकेला नहीं छोड़ सकता, अयान ने परेशान स्वर में कहा। अयान और उसके मॉम के बीच की प्रॉब्लम्स को आयु अच्छे से जानती थी, लेकिन उसकी वजह उसे आज तक पता नहीं थी। आयु ने उसे बहुत बार पूछा, लेकिन अयान ने कुछ नहीं बताया। आज भी सब कुछ जानने की कोशिश में आयु ने एक बार फिर पूछा, क्या तुम अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो? हम काफी सालों से साथ हैं, अब तो बता दो तुम दोनों के बीच प्रॉब्लम क्या है? उन्हें देखकर लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन तुम उनसे दूर भागते रहते हो। अब तक कुछ नहीं बताया है तो ऐसा समझ लो आगे भी कुछ नहीं बताऊंगा। बस यूं समझ लो कि कई बार जो सामने दिखता है वो असल में होता नहीं है, अयान ने जवाब में कहा और उठकर जाने लगा। आयु ने उसके पीछे से तेज आवाज में कहा, तुम और तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मुझे कभी समझ नहीं आएगी। हाँ तो समझो भी मत, तुम हमेशा अपनी दुनिया में जीती आई हो तो अब भी जियो ना, अयान ने बिना मुड़े जवाब दिया और वहां से चला गया। अयान ने जो भी कहा था आयु उस पर गौर करने लगी। अब तक आयु की जिंदगी काफी बेफिक्र तरीके से गुजरी थी, जहां वो कोई भी गलती करती तो अनु संभाल लेती थी। उसके जाने के बाद आयु ने खुद से कहा, मैं तो आज भी अपनी ही दुनिया में जीना चाहती हूँ, जहां मुझे किसी के कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं, पर ये दुनिया जीने कहां देती है। जब से अनु गई है तब से कुछ ज्यादा ही अकेलापन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे फिर से वापस उसी दुनिया में चली जाऊं, जहां मेरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग ही थे। आयु कुछ देर तक वहां वैसे ही बैठी रही, उसे अनु की बहुत याद आ रही थी। तभी उसके फोन की रिंग बजी तो उसे एहसास हुआ वो वहां काफी देर से अकेली बैठी है। आयु सब कुछ भूलकर उठी और बाहर गई। जनरल वार्ड की तरफ जाते हुए उसे प्राइवेट वार्ड एरिया के वेटिंग रूम पर मंथन और आरव दिखे, जो बेंच पर चुपचाप बैठे अपने अपने फोन में लगे थे। इन दोनों को अंदर साक्षी दीदी के पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ बैठकर बच्चों की तरह मोबाइल में लगे हैं। आयु ने उन्हें देखकर सर झटका और जानबूझकर उनके सामने से गई। आयु ने एक नजर भी उनकी तरफ नहीं देखा और पूरे एटीट्यूड से वहां से चली गई। दोनों ही उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अब इसे क्या हुआ? मंथन ने हैरानी के साथ कहा। मुझे नहीं पता, शायद लास्ट टाइम हम इसके साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गए थे, इस वजह से नाराज है, आरव ने अंदाजा लगाते हुए कहा। हो सकता है, कौन सा मैं उसे जाकर मनाने वाला हूँ या आप? मंथन ने भौहें उठाकर जवाब दिया। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल सॉरी नहीं कहने वाला। देखा अभी कैसे एटीट्यूड में वॉक करके गई है, ये यहाँ की डॉक्टर है, इसे साक्षी का ध्यान रखना चाहिए, जबकि पिछले एक घंटे से ये कहाँ गायब थी कुछ पता नहीं। बोलते हुए आरव उठा और मंथन से कहा, डोंट वरी, मैं देखता हूँ इसे, जब से आया हूँ देख रहा हूँ इधर उधर टाइम पास कर रही है। छोड़िए, जाने दीजिए, साक्षी जी की केयर करने के लिए नर्स है, मंथन बोला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डॉक्टर है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम यहीं रुको मैं आता हूँ। मंथन के रोकने के बावजूद आरव वहां से चला गया। वो तेज कदमों से चलते हुए आयु के पीछे गया तो वो जनरल वार्ड में थी। वहां कुछ पेशेंट का रेगुलर चेकअप चल रहा था तो कुछ नए पेशेंट आए थे। एक नर्स दरवाजे पर रजिस्टर के साथ खड़ी थी। आयु को वहां देखते ही उसने कहा, डॉक्टर आपकी यहां जरूरत नहीं है, वैसे भी अपनी जनरल वार्ड में आपकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप रेस्ट कर लीजिए। जानती हूं, पर अब मैं फ्री बैठकर क्या करूंगी, नाइट ड्यूटी में ज्यादातर काम आप सभी देखती हैं, जबकि ऑलमोस्ट डॉक्टर्स जा चुके होते हैं। मैं भी बोर नहीं होंगी और आपका भी टाइम पास हो जाएगा। नर्स के मना करने के बावजूद आयु अंदर आ गई। आरव भी उसके पीछे ही था। आयु एक पेशेंट की तरफ बढ़ी जिसे पेट दर्द की शिकायत थी। वो जाकर उसे चेक करने लगी। तभी आरव उसके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरव ने उसके पास जाकर पूछा। मैं यहाँ पर इसे डांस सिखा रही हूँ, तुम भी सीखना चाहोगे? आयु ने सार्कास्टिक वे में जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ इसी तरह के जवाब की उम्मीद थी। तुम्हें यहाँ नहीं साक्षी के पास होना चाहिए। मैंने सुना अभी नर्स ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी जबरदस्ती तुम आ गई। तुमने ये जानबूझकर किया ना, ताकि तुम्हें रात भर जाकर साक्षी के पास ना रुकना पड़े। आरव को जो भी समझ आया उसने कह दिया। आरव की बात खत्म होते ही आयु उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। उसने उसे अंगुली दिखाकर कहा, अगर तुम्हारा हो गया है तो निकलो यहाँ से, नर्स है साक्षी दीदी की देखभाल करने के लिए। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से बाहर चला गया। वो आयु से पहले से ही नाराज था। ऊपर से उसके इस तरह बात करने पर वो गुस्सा हो गया। ये कुछ ज्यादा ही बदतमीजी नहीं कर रही? इसे तो मैं बताता हूँ। बाहर जाकर आरव ने खुद से कहा और किसी को कॉल करने लगा।